Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने के लिए झुक कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार जिंदगी की राह पर अगर आप झुक कर चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बनती जा रही है, और यही तो हमारी ज़िंदगी का पहला लक्ष्य है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम हसन जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम झुक कर चलने की। एक ईगो जो आज ये ज़िंदगी में हमारे आ गया है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी बनती जा रही है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अगर देखें तो हर एक छोटे से बच्चे को भी ईगो है। ऐसा क्यों है?
ईगो अगर देखें तो उसमें तीन शब्द हैं, ई जी ओ
जी,
और उसका अर्थ है एज गुड आउट, एज गॉड आउट। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने को ही केवल मानते हैं कि मैं ही हूँ, दूसरों को कुछ भी लेकर नहीं चल रहा हूँ और उस शक्ति को भी अलग कर देता हूँ, तो मेरे में डर आता है, इन्फीरियरिटी आती है, इनसिक्योरिटी आती है। ईगो का बेसिकली मीनिंग देखें, अटैचमेंट। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने को अटैच कर रहा है, चाहे खुद की पोजीशन से लेबल्स लगाता है और उन लेबल्स को पकड़ कर रखता है, और जब कभी भी ये लेबल्स उसके थ्रेट होते हैं, नुकसान पहुंचने का उसको आभास होता है, तब वो डरता है।
करेक्ट।
और उसमें फॉल्स ईगो आता है। इसके हिंदी मीनिंग देखें तो बड़े अच्छे हैं, देहभान और अहंकार। देहभान का अभिमान और अहंकार। अभिमान का अर्थ है कि अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए।
ओके।
हर एक व्यक्ति के अंदर एक इच्छा रहती है कि जब मैं कुछ करूं लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, अभी अभी मिले, तुरंत मिले, तो उसके कारण ये शब्द अभिमान आता है। अहंकार का अर्थ है मैं ही, अहम, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, मेरी आइडिया ही ठीक है, बाकी दूसरे की आइडिया ठीक नहीं है। तो वो अपनी आइडिया को पकड़ कर चलता है और वो उसको फोर्स करना चाहता है, तो उसको हम कहेंगे ईगो, फाल्स ईगो आ रहा है।
ओके। तो ईगो का ये डेफिनेशन है आपके हिसाब से। ईगो की अगर हम बात करें, ईगो का सही मायने में अर्थ क्या है? क्योंकि अगर हम देखें, ईगो अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम तो कहते हैं कि भाई ईगो नहीं रखना चाहिए, नेगेटिव टर्म्स में ईगो को रखा गया है, तो ये नेगेटिव क्यों है? ईगो जो है ये नेगेटिव क्यों है? क्यों पॉजिटिव ईगो भी हो सकता है?
उसको हम कहेंगे सोमान, जैसे मैंने कहा देव, सोमान और अभिमान, ये दो शब्द हैं। सोमान एक पॉजिटिव है, आप अपने को वैल्यू दे रहे हो, आप अपनी वर्थ को बढ़ा रहे हो
जी।
ये हम उस नेगेटिव फॉल्स इमेज को पकड़ रहे हैं जो मेरे में नहीं है। और जनरली इसका रूट कॉज अगर देखें, बहुत गहराई में जाएं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को इन्फिरिटी है, और वो जब दूसरे को देखता है और दूसरे उससे बेटर हैं, तो वो अपनी कवरिंग करना चाहता है।
ओके।
अपने को कवर करना चाहता है। तो दो ही चीजें रहती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी ईगो हो गया, वो हर समय अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता है, प्रूव करता है कि मैं ही ठीक हूँ, तो ये फॉल्स इमेज अपनी बनाकर चलता है। और वही लोगों में प्रोजेक्ट करता है कि मैं ऐसा हूँ, पर वो ऐसा होता नहीं है अंदर से।
करेक्ट।
तो इसीलिए आप जो पूछ रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव का अर्थ है कि मैं अपनी वैल्यू को जैसा हूँ वैसा दे रहा हूँ, उसको बढ़ा नहीं रहा हूँ।
ओके।
ईगो वाला अपनी वैल्यू को अनवांटेड बढ़ा रहा है जो वो है नहीं,
मतलब
अपने को हाँ सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो उसके कारण वो अपनी आइडियाज को दूसरों पर डालता है और उसके कारण प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं
जी।
क्योंकि इन लोगों के पास फिर कोई जाना पसंद नहीं करता है।
करेक्ट।
डरते हैं, घबराते हैं।
करेक्ट। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ईगो की, ईगो के अंदर में एक दूसरा पहलू भी होता है, वो होता है अहंकार। लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा अहंकार सा भी आता जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अहंकार को कैसे कम करें, क्योंकि अहंकार तो हानिकारक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ चलते रहते हैं, ऐसे में क्या किया जाए?
जैसे मैंने कहा रूट कॉज कहीं ना कहीं बचपन से आया है
जी,
उसकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन ऐसी हुई है, और बेसिक जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं उसका अपने प्रति लो वर्थ है, सेल्फ वर्थ उसका लो है, और उसको वो कवर कर रहा है और वो दिखा रहा है, हर समय दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। एक बार गुरु नानक साहब से किसी ने पूछा, आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो गुरु नानक साहब ने कहा, नीचे बैठने से गिरने का डर नहीं रहता है। जब हम ऊपर जाते हैं फॉल्स, तो हमें गिरने का डर रहता है। अगर पॉजिटिव जा रहे हैं, वैल्यूज के साथ जा रहे हैं, तो फिर डर नहीं रहेगा, पर बिना वैल्यूज के साथ जा रहे हैं ऊपर, यानी अपनी लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गिरने का डर रहेगा।
ओके।
अब कम करना है तो उसी को रियलाइज करना पड़ेगा।
करेक्ट।
कि कहाँ मैं गलत हूँ और मेरे कारण ये क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। रिलेशनशिप में मैंने कहा कि सबसे बड़ा बैरियर रहता है
ईगो
रहता है, क्योंकि वो हमेशा सोचता है मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं।
करेक्ट।
तो उसके कारण उसको रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार वाले का शरीर के ऊपर भी असर आ जाता है, बॉडी के ऊपर भी असर आता है, और बॉडी में भी स्टिफनेस आ जाता है, और कई तरह के बोनी प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, क्योंकि हर समय ये पकड़ कर चलते हैं। इनका बेसिक नेचर क्या रहता है, ये पकड़ कर चलते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज को, अपने अनुसार कंट्रोल करना।
okay.
उसको मैं कहूँगा कि एक ईगो का फॉर्म है, और वो हो नहीं सकता। हम अगर देखें पूरे विश्व में, हर आत्मा का अपना अपना एक फॉर्मेशन है, परसेप्शन है, उसका बेसिक ग्रोथ है
जी।
तो हर एक का नेचर अलग अलग है
जी,
हर एक की भावनाएं अलग अलग है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको सम्मान देना पड़ता है।
करेक्ट।
हर एक की डिग्निटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है, तब हमारा ईगो एक लेवल पर रहेगा, क्योंकि मैं ना सुपीरियर हूँ ना इन्फीरियर हूँ, मैं जो हूँ अच्छा हूँ, और सामने वाला भी सेम है, वो भी ना सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, वो भी एक अच्छा ह्यूमन बींग है, तो तब हमारे में एक्सेप्टेंस आएगा।
okay.
और तब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बात कर सकेंगे। अब उससे ठीक करना है तो चेक किया कहाँ मैं गलत हूँ, और उसको चेंज किया, और मेन थिंग है इसमें डिटैच होना पड़ेगा अपनी पोजीशन से, पोस्ट से, लेबल से, जो उसने कर रखा है,
क्रिएट किया है।
हिंदी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ सीखा ब्रह्मा कुमारी में, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता, आवरण वाला कभी भी निवारण नहीं कर सकता। यानी जिसने जितनी ज्यादा कोटिंग की हुई है, कवरिंग की हुई है, वो सोल्यूशन नहीं दे सकता, वो इतना टाइट हो जाता है। तो आवरण को अलग करना ही मेडिटेशन है। मैं अपने आवरण को समय अनुसार डिटैच कर रहा हूँ। ऑफिस गया हूँ, ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं, मैं इंचार्ज हूँ
जी,
तो उस समय भी मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उनके साथ इंटरेक्ट करूँ। पोस्ट को लेकर इंटरेक्ट नहीं करूँ, वो तो ठीक है, एक पोस्ट पोजीशन रहती है
जी,
और उसके अनुसार रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। पर हर समय वर्कर के साथ मैं वो लेबल लेकर काम करूँगा तो वो इंटरेक्शन मेरा ठीक नहीं होगा
जी।
अब मैं घर आ रहा हूँ तो ऑफिस से वो पोस्ट का लेबल मैंने डिटैच कर लिया, और घर आकर मैं वाइफ, बच्चे, हस्बैंड जो भी हैं उनसे मैं नॉर्मल इंटरेक्ट कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लेबल्स को ऑफिस से घर ले जाते हैं,
करेक्ट,
और उसी पोजीशन में हम एक्ट और इंटरेक्ट करते हैं,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखेंगे अगर एक व्यक्ति जब ऑफिस में होता है तो उसकी अथॉरिटी होती है, कुछ पोस्ट होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन उसकी वजह से वो एक सर्टेन वे में प्ले करते हैं। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो अगर वो फादर और हस्बैंड के रोल में ना आए तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है,
और वो उसी तरीके से आइडियाज को फोर्स करता है। अगर जैसे कोई प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और उनका काम ही है पढ़ाना, एजुकेट करना और बच्चों को एम्पावर करना, अब वही आइडिया लेकर, लेबल लेकर घर आ रहा है और वो उसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है वाइफ से, बच्चों से, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि एक बैरियर बन गया पोस्ट का, पोजीशन का, तो वो बैरियर इंटरेक्ट होने नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चा भी देख रहा है फादर आए हैं पर वो पोस्ट को लेकर इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जब हम ऑफिस से निकलें, अपनी पोस्ट लेबल पोजीशन की चेयर को छोड़ कर आए। हम चेयर को तो नहीं ले जा सकते,
पर सूक्ष्म चेयर
को, हाँ सूक्ष्म, करेक्ट, सूक्ष्म में वो ले जाता है,
करेक्ट,
और उसी माइक्रो लेवल पर उसके अंदर है, उसकी साइकी में है, तो उससे वो इंटरेक्ट करता है। और इसीलिए ईगो वाले के प्रॉब्लम काफी रहते हैं, उससे कोई इंटरेक्ट होना, बात करना मुश्किल हो जाती है,
करेक्ट।
दूसरा है वो डेलीगेट करना सीखे, क्योंकि ईगो वाला कभी भी डेलीगेट नहीं करता है काम को, वो सोचता है केवल मैं ही कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर सकते, तो वो हर तरीके को, हर बात को पकड़ के रखता है, मैं ही परफेक्ट कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो डेलीगेट करना भी सीखे, टीम एम्पावरमेंट,
करेक्ट।
ईगो वाले की टीम एम्पावरमेंट थोड़ा वीक होती है, तो वो भी करना सीखे, हॉरिजॉन्टल वे में जाए, तो तब उसको पता लगेगा कि हर काम मैं नहीं कर सकता, दूसरे भी कर सकते हैं।
बेसिकली काम को अलॉट करेंगे,
अलॉट करेंगे तो
उनके ऊपर का भार भी तो कम हो जाएगा।
इसीलिए इन लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है,
ओके,
इनमें स्ट्रेस लेवल बहुत होता है। बेसिकली ये लोग टाइप ए पर्सनालिटी वाले रहते हैं, टाइप ए यानी हम ही ठीक है, हम ही ठीक कर सकते हैं, परफेक्शन रहता है, तो इनके कारण इनमें कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसीलिए डिटैच करें, डेलीगेट करें, देना सीखें, और थोड़ा साइलेंट होना सीखें। साइलेंट होंगे तो तब उनको पता लगेगा कि अंदर क्या है मेरे और मैं उसको कैसे करेक्ट कर सकता हूँ।
जी डॉक्टर साहब, आजकल ईगो की वजह से रिलेशनशिप्स टूटते जा रहे हैं, आज अगर एक वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप भी अभी हम कहें तो उसके अंदर भी अगर माना किसी से गलती हो गई, दोनों में से किसी से भी गलती हो गई, लेकिन ईगो जो है ये माफी मांगने नहीं देता।
करेक्ट करेक्ट,
ये कभी बिल्कुल भी माफी मांगने नहीं देता। और माफी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे।
करेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल राइट हैं। और इसके कारण ये बैरियर बना रहता है।
करेक्ट,
उनका रहता है मैं नहीं मांगूंगा। तो इसीलिए कहा कि अगर उनमें ये कैरेक्टर आ जाए, फॉरगिवनेस करना आए, एक्सेप्ट करना आए, तब ये बैरियर दूर होता है। और रिलेशनशिप का ये मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है।
करेक्ट,
और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में आपने जैसे कहा, हरेक का अपना अपना ईगो है, बच्चे का भी है।
करेक्ट,
तो कैसे उसमें इंटरेक्ट करना, एक नॉर्मल लेवल पर आना ही पड़ता है। और तब हम उस लेवल पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। अगर मैं ईगो रहूँगा तो मैं अपने को हाई लेवल पर ही बना कर रखूँगा, तो मैं मिक्स नहीं होऊंगा लोगों से।
करेक्ट,
और मिक्स नहीं होऊंगा तो मेरा कम्युनिकेशन पुअर होगा। ईगो वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में आता है, और वो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो पूरे जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं उसको अपने उस पोजीशन लेवल से डिटैच होकर फिर एक लेवल पर आकर एक्ट और इंटरेक्ट करें, तब उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा।
डॉक्टर साहब, ईगो वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं, ये मैंने नोटिस किया है कि वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, जिसकी वजह से कई बार उन्हें मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए?
कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा कि लोग मेरे से आ नहीं रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, खुद को उसको अंदर का सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं पोस्ट नहीं हूँ, पोजीशन नहीं हूँ, लेबल नहीं हूँ। डॉक्टर इंजीनियर मेरा बाहर का कवरिंग है, पर मैं अंदर तो एक एनर्जी हूँ।
करेक्ट,
तो अगर वो रियलाइज करेगा कि मैं एक एनर्जी हूँ और दूसरा भी एक एनर्जी है, तो तब उसके अंदर का वो बाहरी फॉल्स कवरिंग कम होगा, क्योंकि ये बाहर का कवरिंग है जो उसने एक्वायर्ड किया धीरे धीरे, और वो उसके कारण वो अपने को उसमें सेफ फील करता है।
करेक्ट,
और उसके कारण वो इंटरेक्शंस कम करता है। जैसे आपने कहा वो लोग रिजर्व्ड रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का ईगो जल्दी हर्ट होता है।
ओके,
इन लोगों का खुद का ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है, सेंसिटिव रहते हैं, और जनरली लोअर ब्रेन ही उनका ज़्यादा एक्टिव कर रहा है, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव कर रहा है, इसीलिए ईगो काम कर रहा है, थिंकिंग ब्रेन काम कम कर रहा है इनका। तो देयर इज़ अ बैरियर, और उस बैरियर के कारण ये डिफ़िकल्टीज आती
हैं।
अनलेस कोई उनको रियलाइज़ कराए या वो खुद रियलाइज़ करें। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब वो लोग रियलाइज़ करते हैं, उनके हाथ से जो पावर है वो निकलना शुरू होता है, क्योंकि पावर हर समय हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
करेक्ट,
हर चीज़ फ्लो के आधार पर है, फ्लो चल रहा है, नेचुरल है।
करेक्ट,
अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ हर चीज़ को तो कब तक करूँगा, एक लेवल तक कर सकता, फिर मुझे ओपन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा टाइम इन लोगों की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि प्रॉब्लम इनके बढ़ते जाते हैं शरीर में, मैंने जैसे कहा नुकसान होते हैं, बॉडी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं, तो इसलिए इनको फिर परिवर्तन लाना पड़ता है जब इनके हाथ में वो पावर निकल रहा होता है। और उसके कारण तरह तरह के प्रॉब्लम। अगर हम देखें हाथ को, हाथ में 5 फिंगर्स हैं और पांचों में गैप है
जी।
अब हम सोचें गैप क्यों बनाया गया, तो परमात्मा ने इसलिए गैप बनाया कि दूसरा व्यक्ति आकर उसमें हाथ मिलाकर हैंडशेक करे। तो लाइफ का भी पूरा गेम ही है एक साथ चलना, इसीलिए गैप बनाया। पर ईगो वाले वो गैप को कम कर देते हैं, वो खुद ही चलना चाहते हैं
जी।
और उसके कारण तरह तरह के प्रॉब्लम
आने लगते हैं। डॉक्टर साहब एक और बात, ईगो जिसके अंदर है, खास करके जो व्यक्ति होता है वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आती, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
ऐसे ही लॉर्ड गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो लॉर्ड गौतम बुद्ध ने कहा रिमूव आई यानी ईगो एंड देन रिमूव द वॉन्ट डिजायर, ये दो चीज़ें निकालेंगे तो खुशी ऑटोमेटिक आएगी। अब खुशी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो हर चीज़ अपने को अपने अनुसार करना चाहते हैं और वो हो नहीं पाती है, और दूसरा हर समय दूसरे में वो डिफेक्ट देखते हैं, खुद को ही परफेक्ट मानते हैं,
करेक्ट,
तो वो खुशी उनकी
चली जाती है
और उनकी डिजायर्स बढ़ती जाती है,
करेक्ट।
एक काम किया फिर दूसरी डिजायर आई, तो उसके कारण उनका हैप्पीनेस का लेवल कम रह पाएगा।
तो ये रीजन है। अब इसका सलूशन क्या है? क्योंकि सलूशन की अगर हम बात करें, अगर एक ईगो वाले व्यक्ति होता है उसे चेंज होना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है?
जैसे मैंने मेन कहा, इसका मेन फंडा यही है, नो योर सेल्फ,
ओके,
खुद को वो पहचाने समझें। कभी वाइफ या कोई और व्यक्ति उनको कह रहा है तो उस समय अपने अंदर जाकर वो अपने को पहचाने
जी,
और दूसरों की बात को सुने, लिसन करें, तो तब अंदर उनको पता लगेगा कि कहाँ उनका प्रॉब्लम है और उसको कैसे करेक्ट करना। जितना भी मैंने सीखा उसका आधार ही है कि जब मेरे को पता लगता है मैं कहाँ रॉन्ग हूँ और उसको मुझे करेक्ट करना है। तो रोज़ रात को हम अगर अपनी चेकिंग करते हैं पर्सनालिटी की, तो दिन में क्या हुआ वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं,
करेक्ट।
तो ऐसे ही ये व्यक्ति अगर अपने को आइडेंटिफाई करता है तब वो करेक्ट कर सकता है। जैसे आपने कहा उसका बैरियर एक बना ही रहता है,
करेक्ट।
ईगो का अर्थ ही क्या है? बैरियर, उसके चारों तरफ, और वो बैरियर को डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग हर्ट भी होते हैं
जी।
तो उसको डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है अनलेस वो खुद को रियलाइज करे,
करेक्ट। तो खुद की रियलाइजेशन होना
सेल्फ रियलाइजेशन, नो योर सेल्फ।
डॉक्टर साहब आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि किस तरह से अगर हम जिंदगी में पूरे दिन के लिए एक दिनचर्या बना ले और दिनचर्या के अंदर में एंड ऑफ द डे ये देखें, चेक करें कि अपने आप में कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसे कैसे बदलें, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ईगो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों आज हमने क्या जाना, ईगो जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको चेंज करने के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के साथ बात करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सी ऐसी आदत है मेरी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही और लोग मुझसे दूर भागते जा रहे हैं। तो अपने आप से बात करें और सदा खुश रहें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।